लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राख देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। श्रोताओ, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 130वां भजन। इसी भजन के पाठ से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। यह भजन भी तीर्थयात्रियों का ही गीत है, जिसमें हृदय की अतल गहराई से प्रभु भक्त ईश्वर को पुकारता है। सियों पर्वत की ओर चढ़ता हुआ तीर्थयात्री प्रभु से पापों की क्षमा मांगता तथा उनकी असीम दया की मंगल याचना करता है। श्रोताओ, 130वें भजन में मनुष्य अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप की याचना करता है। वह अपने दैनिक जीवन पर दृष्टि डालता और अपनी सारी समस्याओं एवं तनावों को ध्यान में रखकर आशा करता है कि प्रभु उसके पापों को क्षमा करें और उसके दिल पर बने बोझ को हल्का करें, यानी कि उसे मुक्ति दिलाएं। श्रोताओ, संत अगस्तीन ने 130वें भजन के शब्दों को अपने कक्ष की दीवार पर लिख रखा था ताकि उन्हें अनवरत यह याद रहे कि प्रभु के समक्ष वे एक पापी मात्र थे जिन्हें प्रतिपल प्रभु की दया और अनुकंपा की जरूरत रहा करती थी। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि उक्त भजन प्रार्थना के रूप में मध्यकाल से ही कलीसिया में प्रचलित था, जिसे लैटिन भाषा में दे प्रोफुंडिस कहा जाता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड के महागिरजाघर में दे प्रोफुंडिस गीत को सुनकर ही जॉन वेस्ली ने ख्रिस्तीय धर्म का आलिंगन कर लिया था। संत अगस्तीन और जॉन वेस्ली दोनों ही महान धर्म तत्व वैज्ञानिक और ईश शास्त्री थे, जो हृदय में समाये मनुष्यों की भावनाओं से भली प्रकार वाकिफ थे। वे ख्रिस्तीय धर्म के सार से भली भांति परिचित थे, जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोगने, मारे जाने, दफनाए जाने और तीसरे दिन पुनः जी उठने की प्रार्थना निहित है। प्रभु यीशु ख्रीस्त गर्त में गिरे और पुनः जी उठे ताकि हम मनुष्य पाप में गिरने के बावजूद क्षमा की याचना कर मुक्ति प्राप्त कर सकें।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है।
श्रोताओं, 130वें भजन में यह स्मरण दिलाया गया है कि हम मनुष्य बुराई को केवल उसके बुरे पक्ष से ही पहचानते हैं, किंतु प्रभु ईश्वर दया सागर हैं, उनकी दया अपार है, जो बुराई में केवल बुराई नहीं देखते बल्कि बुराई में क्षमा और कृपा के अवसरों को देखते हैं। इसीलिए तो प्रभु भक्त ईश्वर से क्षमा याचना कर सकता है और अपने हृदय की गहराई में समाई व्यथा को समाप्त कर सकता है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ में हमें यह नहीं बताया गया है कि ईश्वर क्या हैं, अपितु यह कि ईश्वर किसके लिए हैं। भजनकार कहता है कि ईश्वर हमारे लिए हैं, हमारी मुक्ति के लिए हैं। ईश्वर प्रतिपल हमारी मदद को तत्पर हैं। वे हमें हमारे नरक से निकालने के लिए सदैव तत्पर रहा करते हैं। इसलिए हम प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास करें तथा उन्हीं में आशा की खोज करें। ईश्वर में आशा का अर्थ है उन्हीं पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। हमारा आज और हमारा कल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, सब कुछ ईश्वर पर निर्भर रहता है। श्रोताओं, सच तो यह है कि स्तोत्र ग्रंथ के 130वें भजन में यथार्थ मानवता का हमें दर्शन मिलता है। इस भजन में मनुष्य प्रभु ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने हृदय की अतल गहराई से उनसे क्षमा की याचना करता है। वह विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करता है कि वह कमजोर है, पापी है और हर पल उसे ईश्वर की दया और कृपा की आवश्यकता रहा करती है। इस प्रकार मानव जाति ईश्वर के प्रेम का आलिंगन कर नवीकृत होती है। स्वीडन के विख्यात अर्थशास्त्री और राजनयिक डाग हार्मसयोल्ट ने अपनी डायरी में लिखा है, ईश्वर मुझे एक शुद्ध हृदय प्रदान कर जिससे मैं तुझे देख सकूं, एक विनीत हृदय प्रदान कर जिससे मैं तेरी सुन सकूं, प्रेमपूर्ण हृदय दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, विश्वास से भरा हृदय प्रदान कर जिससे मैं तुझमें निवास कर सकूं। 130वें भजन के बाद स्तोत्र ग्रंथ के 131वें भजन में भजनकार बाल सुलभ मनोभाव की अभिव्यक्ति करता है। कहता है, प्रभु मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे हैं। आगे कहता है, माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है, ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझमें है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। श्रोताओं, तीन पदों वाले इस छोटे से गीत में प्रभु ईश्वर के प्रेम का बखान किया गया है, उन्हीं के प्रेम पर विश्वास की अभिव्यक्ति की गई है तथा ईश प्रेम पर मानव के पूर्णतः निर्भर रहने की बात कही गई है। इस स्थल पर श्रोताओं का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करा दें कि जेरूसलम की ओर बढ़ते तीर्थयात्रियों के मन में भी यही बातें उठी होंगी। उनके मन में भी तरह तरह के प्रश्न उठे होंगे। क्या जो कुछ उन्होंने अब तक किया वह सब सही था? क्या जीवन के विरुद्ध उनकी शिकायतें और उनका क्रोध सही था? क्या उन्होंने अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश की थी अथवा नहीं? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में वह कहता है कि उसने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो उसकी शक्ति से परे हैं। इसीलिए अब उसकी आत्मा माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश शांत और मौन है और वह प्रभु पर भरोसा रखने और प्रभु की स्तुति करने योग्य बना है अभी और अनंत काल तक।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज माउंट कार्मेल की माता मरियम का पर्व है। संत पापा फ्रांसिस ने कार्मेल की माता मरियम से प्रार्थना करते हुए विश्वासियों को पड़ोसी प्रेम में बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संदेश में लिखा, कार्मेल पर्वत की माता मरियम हमारी माता हमें निर्दोष हाथ एवं विशुद्ध हृदय प्राप्त करने तथा पड़ोसियों से झूठ नहीं बोलने अथवा उनकी बुराई नहीं करने में मदद दे, तब हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकेंगे और उनकी आशीष न्याय एवं मुक्ति प्राप्त करेंगे। कार्मेल पर्वत का जिक्र राजाओं के पहले ग्रंथ में किया गया है, जहां नबी ईसाया ने बाल देवता के 450 नबियों को चुनौती दी थी और जीवंत ईश्वर पर इसराइलियों के विश्वास को पुनः जागृत किया था। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ धम्मसंघ ने 16 जुलाई को एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसकी मूल विषय वस्तु है दुराचार के मामले को सुलझाने के लिए बारंबार पूछे जाने वाले सवालों का एक सटीक एवं समयनिष्ठ उत्तर देना। दिशा निर्देश की इस लघु पुस्तिका में कुल 30 पृष्ठ तथा 9 अध्याय हैं, जो याचकों द्वारा नाबालिगों की यौन दुराचार के मामले पर कार्रवाई की प्रक्रिया में पूछे जाने वाले मुख्य सवालों का उत्तर देती हैं। अतः यह इस मामले में नियमावली की किताब अथवा कोई नया विधान नहीं है, बल्कि सामान्य एवं कानूनी कार्रवाई करने वालों के लिए एक साधन है, जिन्हें गंभीर अपराध पर विहित विधान का अनुवाद ठोस कार्यों में करना पड़ता है, जिससे कि गहरे एवं दुखद घाव से पीड़ित कलीसिया को चंगा किया जा सके। इसकी मांग 2019 के फरवरी माह में कलीसिया में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए वैटिकन में विश्व भर के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के लिए आयोजित सभा में की गई थी। अपराध कैसे होता है, आरंभिक जांच कैसे होनी चाहिए, संभावित आपराधिक प्रक्रियाएं क्या हैं, आदि कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर 2001 में प्रकाशित संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के मोतु प्रोप्रियो सैक्रामेंटम सांतिटातिस तुतेला तथा 2010 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा उसमें संशोधन एवं संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2019 में प्रकाशित मोतु प्रोप्रियो वोस एस्टिस लुस्क मुंदी में वर्तमान कोड के निरंतर संदर्भ द्वारा किया गया है। पुस्तिका का निर्माण 4 मुख्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहला, मानव व्यक्ति की रक्षा। कलीसियाई अधिकारी से मांग की गई है कि वे इसके लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करें, ताकि पीड़ित एवं उनके परिवार के साथ सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार किया जा सके। उन्हें उनका स्वागत करना, उन्हें सुनना और विशेष सेवाओं द्वारा उनका साथ देना है। साथ ही साथ विशेष मामलों में आध्यात्मिक शारीरिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। लघु पुस्तिका के निर्माण का दूसरा पहलू है दुर्व्यवहार के कथित मामले पर एक सामान्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी जानकारी की जांच और सटीक सत्यापन की आवश्यकता। शिकायत चाहे औपचारिक रूप से ना भी की गई हो, किसी संचार माध्यमों द्वारा बातें उजागर हुई हो, स्रोत गुमनाम हो, दस्तावेज सलाह देता है कि हरेक जानकारी का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाए एवं उसका गहराई से जांच की जाए। हालांकि इस मामले में संस्कारों द्वारा जारी सील बरकरार रहती है और व्यक्ति को अन्य माध्यमों द्वारा खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा पहलू संपर्क से संबंधित है। लघु पुस्तिका के विभिन्न बिंदुओं में सचिव के कार्य के प्रति सम्मान का स्मरण दिलाया गया है। यहाँ तक कि अगर इस बात पर जोर दिया जाए कि प्रारंभिक जांच के दौरान पीड़ित और गवाह तथ्यों के बारे में चुप्पी से बंधे नहीं हैं। हालांकि जनता से किसी भी अनुचित और अवैध सूचना के प्रसार से बचने के लिए भी कहा गया है, विशेष रूप से प्रारंभिक जांच चरण में, ताकि पहले से ही तथ्यों को परिभाषित करने का आभास ना हो। चौथा पहलू कलीसिया अथवा राज्य के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। एशियाई देशों में विभिन्न चुनौतियों के कारण 3 सप्ताहों की सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया है। महाधर्माध्यक्ष विलगास ने लिखा है कि माता मरियम की सहायता से हम कभी असहाय नहीं होंगे। फिलीपींस में लिंगायन डाकूपान के महाधर्माध्यक्ष सोक्रेट विलगास ने 21 दिनों की प्रार्थना का आह्वान किया है, जिसमें देश की राष्ट्रीय चंगाई के लिए प्रार्थना की जाएगी, जो कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई को कार्मेल की माता मरियम के पर्व के दिन की जाएगी और यह 5 अक्टूबर संत मरिया मेजर महागिरजा घर के समर्पण पर्व तक जारी रहेगी। धर्म प्रांत के पल्ली पुरोहितों के लिए फिलिपिनी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की वेबसाइट में प्रकाशित पत्र में महाधर्माध्यक्ष विलगास ने उस असहाय एवं निराशा की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जो देश के ऊपर मंडरा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल एवं सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता पर गौर किया है, जो सभी को असमंजस में डाल दिया है कि हम एक आध्यात्मिक धर्म गुरु के रूप में किस तरह लोगों की सेवा करें और संकट के समय में प्रभु के शिष्य कैसे बने रह सकें। महाधर्माध्यक्ष ने लिखा है, हम कुंवारी मरियम का आह्वान करें, क्योंकि यदि हम उनसे जुड़े रहेंगे तब हम कभी असहाय नहीं होंगे। महाधर्माध्यक्ष ने बतलाया है कि 21 की संख्या का अर्थ है मिस्र से मुक्त होने के बाद इसराइलों ने 21 बार बगावत की थी। महाधर्माध्यक्ष ने कहा है कि आज हम ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने की स्थिति में है और इसलिए हम अपने पापों के परिणामों को देख रहे हैं। हमें पश्चाताप करना चाहिए यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं, विशेषकर 21 दिनों के दौरान। उन्होंने निर्देश दिया है कि माता मरियम के प्रति अपने देश के समर्पण एवं चंगाई की प्रार्थना को हर एक मिस्सा में किया जाए। खान के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक बड़े क्षेत्र में जंगल को नष्ट करेगा एवं आदिवासी समुदाय की जीविका को प्रभावित करेगा। कलीसिया के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक नेताओं के साथ झारखंड में कोयला खनन की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है, जिनका मानना है कि इससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ेगा और विस्थापन का मामला बढ़ेगा। 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य से संघीय सरकार की राय पूछी थी, जिसने कोयला क्षेत्र की नीलामी के साथ संघीय सरकार के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली में भारतीय सामाजिक संस्थान के आदिवासी अध्ययन विभाग के प्रमुख जेसुइट फादर विंसेंट एक्का ने कहा, राज्य में आदिवासी खेती और वानिकी पर निर्भर हैं, इसलिए खनन के लिए भूमि आवंटित करने से जंगल और साथ ही खेती के विशाल क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।